देश का पहला चक्कर।
ये अग्निवीर योजना मुझे पहले समझा दो, ये है क्या? जो सेना में भर्ती होने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करता है वो कितने बजे उठता है? 4 बजे। और ऐसे लाखों युवा सपना देखते हैं तिरंगे की रक्षा करने का सपना, उनमें से पहले 80,000 तकरीबन हर साल 80,000 चुने जाते थे। कोई अरुणाचल जाता था, कोई जम्मू कश्मीर, कोई राजस्थान, कोई लद्दाख, कोई ठंड में, रेगिस्तान में, बारिश में, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, बच्चे, परिवार, माता पिता, सब कुछ परे करके बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाता था। वो बॉर्डर पे खड़े होते थे, वहां पे तूफान आ जाए, बर्फ गिर जाए, गोली लग जाए, बम फट जाए, कुछ नहीं, देश के लिए अपना खून देने के लिए 80,000 युवा हर साल सेना में भर्ती होते थे। अब उनको पहले सेना क्या देती थी? सबसे पहले सेना उनसे कहती थी, देखो एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको हिंदुस्तान के लिए लड़ना पड़ेगा, शायद आपको शहीद होना पड़ेगा, मगर हम आपको एक बात की गारंटी देंगे कि दुनिया में सबसे बेहतर ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सेना को, वायु सेना को, नेवी को हम देंगे। दूसरा वायदा, 15 साल आपको सर्विस मिलेगी, अगर आपको इतनी सी भी चोट लगी हम आपकी रक्षा करेंगे। तीसरा वायदा, आपने इस देश के लिए अपना पूरी की पूरी आपने जिंदगी दी, आपने अपने बच्चे दे दिए, माता पिता दे दिए, परिवार दे दिया, अपने सारे के सारे सपने दे दिए इस तिरंगे को रक्षा करने के लिए, ठीक है हम आपको पेंशन देंगे। जब आप गांव में वापस जाओगे तो हम आपको एक्स सर्विसमैन कह के हम आपको गांव भेजेंगे कि आपको वहां पे, चाहे आप शहर में रहो चाहे आप गांव में रहो, जब हिंदुस्तान की बाकी जनता आपकी ओर देखे वो कहे कि इस व्यक्ति ने वो किया जो मैंने नहीं किया, इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी इस देश को दी, अपना खून इस देश को दिया, अपने सपने इस देश को दिए, और इसीलिए मैं इस व्यक्ति का आदर करूंगा, इसका रिस्पेक्ट करूंगा। ये 3 वायदे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता अपनी सेना, अपनी वायु सेना और अपनी नेवी के हर व्यक्ति को देती। अब अग्निवीर योजना ने ये तीनों के तीनों वायदे तोड़ दिए हैं।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अग्निवीर और यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी में क्या अंतर है? आपने अभी अभी राहुल गांधी के भाषण का एक हिस्सा सुना। मेरा सवाल है कि क्या आप किसी अग्निवीर से मिले हैं, अग्निवीर के लिए तैयारी करने वाले नौजवान से मिले हैं? इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, क्या आप यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी से मिले हैं? नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के चीफ प्रदीप कुमार जोशी से मिले हैं? क्यों युवाओं को अग्निवीर नहीं यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी बनना चाहिए, NTA के चीफ प्रदीप कुमार जोशी बनना चाहिए? हमारा ये प्रेरक वीडियो राष्ट्रीय लेवल के उद्देश्यों से बनाया गया है ताकि कंपटीशन की राह में भटक गए युवाओं को हम उन रास्तों के बारे में बता सकें जहां लोग नियम से ही 20-20 साल वाइस चांसलर बनते हैं और आयोगों के पद पर रह जाते हैं। लेकिन पहले बात अग्निवीर की, क्या आप उस नौजवान से मिले हैं जिसने अग्निवीर योजना के कारण सेना में भर्ती होने का सपना छोड़ दिया? और उस नौजवान को जानते हैं जो अग्निवीर के बाद भी सेना में भर्ती के लिए दिन रात एक कर रहा है? क्या आपका परिचय उन सपनों से है जो किसी को अग्निवीर बनाता है, उन जज्बों से है जो किसी को सेना में भर्ती होकर जान देने के लिए तैयार करता है? अग्निवीर पर हमने कई वीडियो बनाए लेकिन मेरी भी किसी से आमने सामने की मुलाकात नहीं है, उन्हें केवल उन वीडियो में देखा है जिन्हें हमारे साथियों ने अलग अलग जिलों से भेजा है। राहुल गांधी के वीडियो में अग्निवीर को देखा और संसद में उनके और सरकार के दावों और खंडनों के बीच अग्निवीर को देखा। जवान बनने के लिए नौजवान कितनी दूर के कोनों से निकल कर आते हैं और अचानक सेना की वर्दी पहनकर सरहदों की निगरानी करने लग जाते हैं। आज भी वीडियो आया है, आज भी आमने सामने की मुलाकात नहीं है, बस इस वीडियो को बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखता रहा, उनके जीवन में झांकता रहा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यह उस सुबह से पहले की रात है जब आसपास के जिलों से आए नौजवान आगरा की सड़क पर सो रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं। उमस भरी रात में रात की ठंडक की कल्पना करते हुए सोए जा रहे हैं। इस पंखे से कूलर की हवा तो आती ही होगी। सड़क के किनारे जवानों ने कतारें बना ली, बीच का रास्ता किसी के लिए छोड़ दिया है। कईयों के पांव हिल रहे हैं, कईयों ने अपनी पीठ को इस तरह से स्थिर कर दिया है कि शरीर जिस हाल में जैसे भी जम गया है काफी है। रात ही तो है, रात कट जाने के लिए काफी है। इन तीनों ने अपना ग्रुप बना लिया है, साथ सोने का भरोसा। इतना तो होता है कि सामान सुरक्षित रहेगा, रात का क्या है, कट ही जाएगी। इस फुटपाथ पर अब जगह नहीं बची है, लेकिन किसी की नींद इतनी गहरी भी नहीं आई है। कुछ तो बैठ ही गए हैं, उन्होंने नींद का इंतजार छोड़ दिया है और कॉपी किताब निकाल कर पढ़ाई शुरू कर दी। कोलतार के इस बिस्तर पर सोकर रात बिताकर सुबह अग्निवीर की भर्ती में इन्हें शामिल होना है। क्या आपने पहले कभी देखा था कि सेना में भर्ती होने के सपनों के पूरा होने से पहले की रात कैसी होती है? ट्रैक पर दौड़ने से पहले नौजवान किस जगह पर अपनी रात बिताकर भर्ती केंद्र में आता है? इन नौजवानों के सपने भी इन्हीं की तरह आधे अधूरे कपड़ों में होते हैं, आधे सोए आधे जागे लगते हैं। आपने क्या सोचा था, इनके सपने भी सैनिक की वर्दी पहनकर मार्च करते रहते हैं? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि कोई नौजवान सड़क और फुटपाथ पर इस तरह सोकर भर्ती का इंतजार करेगा और बिना देश से शिकायत की देश के लिए जान दे देगा? कभी आप ऐसा कर पाएंगे? क्या इनके सपनों में केवल नौकरी का सपना है? अग्निवीर की सच्ची दुनिया में आपका स्वागत। यह अजीब सी रात है, नौजवानों को पता है कि सैनिक बनने का सपना अगर पूरा हो भी गया तो 4 साल बाद खत्म हो जाएगा।
तो बिल्कुल सफल है ही नहीं, क्योंकि जो बच्चा 22 साल के हो गई तुरंत उसे रिटायरमेंट मिल जाएगा, और जो सरकार है, सरकार में जो लोग हैं वो 50-50, 60-60 साल के हो गए फिर ये कहते एक चांस मुझे और चाहिए, और जो 22 साल का लड़का है उसे तो रिटायर करके घर भेज रहे हो, ये तुम्हारी क्या राजनीति है? और ये अग्निवीर तुम चला रहे हो, जैसे इसमें हम लोगों को कोई प्रॉफिट तो है नहीं ज़्यादा, ना तो तुम कोई पेंशन दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो। 4 साल बाद ऐसा तुमने कोई शेड्यूल तो नहीं बनाया जिसमें आगे चल के कि बच्चा यहाँ से चलो 4 साल बाद रिटायर होके आगे जाएगा, क्या करेगा, जाके घर पर जाएगा, फिर से बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी तो उतनी ही है।
भले अग्निवीर 4 साल की नौकरी है, लेकिन इसके लिए भी नौजवान कितनी मेहनत करते हैं, उनकी तपस्या देखिए। 4 साल की नौकरी के लिए इतनी मेहनत, अगर इन नौजवानों को दूसरे जॉब का पता होता तो शायद ये अग्निवीर की तैयारी छोड़ उसी की करते। इन्हें नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए के चीफ प्रदीप कुमार जोशी से मिलना चाहिए, जो बिना इस तरह से सड़क पर दौड़ लगाए प्रतियोगिता परीक्षा दिए, 2006 से ही विभिन्न आयोगों के चेयरमैन हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं करवा रहे हैं एक समानांतर रूट से, नियमों के सहारे ही। ध्यान रहे, इनकी नियुक्ति गैर कानूनी नहीं होती, लेकिन नियमों के सहारे ही आप इतने लंबे समय तक उस तरह के पदों पर विराजमान हो सकते हैं जहां पहुंचने के लिए कोई दिल्ली या कोटा जाकर 4-5 साल यूपीएससी की तैयारी करता है। लेकिन यूपीएससी का चेयरमैन बनने के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं है, बस प्रदीप जोशी और मनोज सोनी की तरह प्रतिभाशाली होना पड़ता है और सौभाग्यशाली भी। हमारे सिस्टम में अन्याय के अनेक रास्ते हैं, आप उन रास्तों पर चलिए। भारत में अगर न्याय पाना है तो सबसे पहले यहाँ के सिस्टम में खांचे खांचे में घुसे अन्याय को समझना होगा। रोज रोज कोचिंग जाने, घंटों पढ़ने और रात भर खाली पेट सोने से अच्छा है इनकी तरह बनो, ताकि बिना कंपटीशन के नौकरी का सारा जीवन वाइस चांसलर और आयोग की चेयरमैनी में कट जाए। ऐसे लोगों के लिए मेरिट की कोई बहस नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग किसी गलत रास्ते से नहीं आते, नियम से आते हैं। सिस्टम उनके लिए अलग से एक्सप्रेस वे जरूर बना देता है और आप जाम में फंसे रह जाते हैं, और ये लोग अलग लेन से मंजिल पर पहुंच जाते हैं और मकाम पर धंसे रह जाते हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं इस भारतवर्ष में जो कुर्सी पर पहुंचकर नौजवानों के अग्निवीर बनाने के लिए नियम बना रहे हैं। नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि जब तक मैं मनोज सोनी और प्रदीप जोशी की बात करूं, इनका प्रेरक जीवन परिचय दूं, हाथ जोड़े रखिए वीडियो के सामने और हाथ में अड़हुल का फूल ले लें, मन में किसी फिल्म स्टार का ध्यान ना लाएं। मनोज सोनी 40 साल की उम्र में ही 2005 में महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के वाइस चांसलर बन गए। यहां 3 साल वाइस चांसलर रहे, फिर 2009 से 15 तक अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में 6 साल वाइस चांसलर रहे। बिना किसी प्रतियोगिता के, बिना सड़क पर रात गुजारे, दिन रात खुले बदन सड़क पर दौड़े, अभ्यास किए, ये जनाब 9 साल वाइस चांसलर रह गए। आपको 4 साल का अग्निवीर बनाने का लेक्चर दिया जा रहा है। प्रतिभाश्री मनोज सोनी वाइस चांसलर बनने से पहले सरदार पटेल विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, लेकिन 40 साल की उम्र में ही वाइस चांसलर बन गए। केवल वाइस चांसलर ही नहीं रहे, बल्कि कई संस्थाओं के गवर्निंग बॉडी के भी सदस्य रहे। 2017 में मनोज सोनी यूपीएससी के सदस्य बन गए, यानी दिल्ली आ गए। 2020 में साधु बन गए, लेकिन यूपीएससी से जुड़े रहे। 2020 में यूपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए और मई 2023 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं दी, मगर नियम कानून और बैठकों के बाद ही इनकी नियुक्ति हुई। हिंदू अखबार के महेश लांगा और विजेता सिंह की आज की खबर है, इन्होंने निजी कारणों से 1 महीना पहले इस्तीफा दिया था, जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। वैसे इनका कार्यकाल 2029 में समाप्त होगा। 2017 से 2029 मतलब 11 साल इनके यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्य के रूप में ही कट जाएंगे। ऐसा कुछ अग्निवीरों को करना चाहिए, ये भी देश सेवा है। ये लोग भी भारत माता की जय बोलते हैं। सिस्टम में नियम बने हैं, जिसके सहारे नियम पूर्वक आप 9-10 साल के लिए वाइस चांसलर, 9-10 साल के लिए आयोग का चेयरमैन बन सकते हैं। अगर आप प्रतिभाश्री मनोज सोनी के बारे में नहीं जानना चाहते हैं तो ये आपकी गलती है। इनसे पहले प्रदीप कुमार जोशी कई साल तक इस यूपीएससी में जुड़े रहे, जो इस समय एनटीए के चीफ हैं। प्रदीप कुमार जोशी भी 2006 से ही चेयरमैनी कर रहे हैं। इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि कोई कंपटीशन नहीं होता, सीने की चौड़ाई नहीं नापी जाती है, अंडरवियर का नाप नहीं लिया जाता है, लघु पतलून पहनकर सड़क पर नहीं आना पड़ता है। लक्स का स्लोगन कितना अच्छा है, अपना लक पहनकर चलो। इस देश में लघु पतलून अंडरवियर का संबंध भी लक से है और राजसत्ता के सुख का भी संबंध लक यानी किस्मत से है। बिना रास्ता भटके, बिना विषय से भटके, भारत में आप किसी विषय के मर्म को नहीं समझ सकते हैं। हमने तो आपको प्रतिभाश्री मनोज सोनी, प्रतिभाश्री प्रदीप कुमार जोशी की ही प्रेरक कहानियां बताई हैं। निश्चित रूप से जम्बूद्वीप, आर्यावर्त में ऐसे कई 100 लोग होंगे जो एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर इन पदों पर कई साल से पदासीन होंगे। और बेस्ट बात यह है कि देश की सेवा कर रहे हैं। आप युवाओं में चरित्र और किरदार का निर्माण कर रहे हैं। इतने आराम की नौकरी तो आईएएस की भी नहीं होती, आईपीएस की भी नहीं होती। आईपीएस भी बेचारा 2-4 बार सस्पेंड हो जाता है, कहां कहां तबादला होता है, बिना काम वाले विभागों में बिठाकर उसे सजा दी जाती है, ईडी सीडी के चक्कर में जेल भी हो आता है। तो हमारा मकसद केवल अग्निवीर पर चर्चा नहीं करना है, बल्कि अग्निवीर से भी बेहतर और कमाल के विकल्पों की बात करना है। अगर आप अपने लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा ही जुगाड़ करवा दीजिए। इन नियमों को जानने के बाद सांसद जी को फोन कीजिए, अपने बारे में बात कीजिए। अपने बारे में नहीं कर सकते हैं, मेरी चर्चा चलवा दीजिए, मेरा जुगाड़ हो जाएगा। कहीं का चेयरमैन 2035 तक के लिए बनवा दीजिए, वीडियो बनाने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। आप ना तो अपना भला करते हैं और ना मेरा कर रहे हैं। चलिए आगे बात अग्निवीर की कर रहे हैं। 4 जुलाई के अपने वीडियो में हमने आपको सेना का ब्रोशर दिखाया, कहा था इसमें अग्निवीर को क्या क्या मिलेगा इसकी जानकारी दी गई है। इसमें सब लिखा है, 4 साल की नौकरी के बाद क्या क्या मिलेगा। अजीब नौकरी है, मिलने से ज्यादा समाप्त होने के बाद के सपने दिखाती है, मगर कहीं नहीं लिखा है अग्निवीर 4 साल के बाद जब निकाला जाएगा तो केंद्र से लेकर राज्य की किन किन कंपनियों में नौकरियों में उसे आरक्षण मिलेगा या प्राथमिकता मिलेगी, सार्वजनिक क्षेत्र की किन कंपनियों में उसके लिए आरक्षण होगा या प्राथमिकता मिलेगी। दूसरी तरफ नियमित अफसरों की नौकरी का ब्रोशर देखिए, इसमें करियर का सपना दिखाया जा रहा है, लिखा है पेशेवर तरीके से विकास होगा, काम की संतुष्टि मिलेगी, आर्थिक स्थायित्व आएगा, सामाजिक हैसियत बढ़ेगी, जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। इस पेज पर बताया गया है कि सेना के अफसर को रैंक वृद्धि कैसे मिलती है, वे सेना में भर्ती होकर कैसे कर्नल, ब्रिगेडियर और जनरल बनते जाते हैं। अफसरों को आप बढ़िया करियर, सामाजिक हैसियत, आर्थिक सुरक्षा दे रहे हैं और जवानों को आप 4 साल बाद निकाल कर क्या होगा इसका सपना दिखा रहे हैं। लोकसभा में जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया तब उसके कुछ दिनों के बाद सरकार को सच्चाई समझ में आई। 10 जुलाई के आसपास CISF, BSF, RPF के प्रमुखों ने ऐलान किया कि उनके यहाँ की नौकरियों में अग्निवीर को 10% आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा और उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। इसका असर तो उन छात्रों पर भी पड़ेगा जो सेना में नहीं होने पर अर्धसैनिक बलों की तैयारी में लग जाते हैं। हमने 4 जुलाई के अपने वीडियो में यह भी बताया था कि 2 साल पहले हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सार्वजनिक बयान दिया था कि हरियाणा में तमाम नौकरियों में अग्निवीर को रखने की गारंटी दी जाती है। उनकी जगह मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी ने भी यही ऐलान किया है। हरियाणा की कई सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का ऐलान है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की लागू की गई ये योजना एक लोकहित योजना है, इस योजना के जरिए आज हमारे पास एक्टिव और स्किल्ड युवा हैं। आजकल अखबारों में ऐसी खबरों की भरमार है, सेना की नौकरी के बाद क्या क्या मिलेगा उसे तोहफा लिखा जाता है, लेकिन नौजवान सेना की नौकरी में यह सब चाहते हैं, ना कि 4 साल बाद निकाल देने के बाद दूसरी नौकरियों से हासिल करना चाहते हैं।
10% से कुछ नहीं होने वाला है, उससे क्या होगा आप बताइए, 10% मिल भी जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा, इतना टाइम नहीं मिलता ना पढ़ाई के लिए, ये मुझे ये चल नहीं पाएगी मेरे हिसाब से, ये बंदी हो जाएगी।
इन्होंने अभी जो 10% है उसमें कोटा कर दिया वो बात ठीक है, ये अग्निवीर योजना तो सभी रूप से ख़राब है क्योंकि हम बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है इससे। तुम बताओ अब 4 साल के लिए हमको इस योजना में जोड़ा जा रहा है, उस 4 साल के बाद जब हम पढ़ने लिखने की उम्र है तब उसमें लगा दे रहे, फिर 4 साल बाद घर पर भेज देंगे, इसमें 10% में फिर कितनी पढ़ाई कर लेंगे हम, ये बताओ तुम। वो परमानेंट सैनिक तो सब चीज़ मिलती है, हमको तो कुछ नहीं मिलती है, देश सेवा तो हम भी करने जा रहे हैं।
अग्निवीर को ठीक बताने के लिए सेना से ज़्यादा अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस की नौकरियों का योगदान माना जाना चाहिए, इनकी भर्तियों में आरक्षण देकर अग्निवीर को आकर्षक बताया जा रहा है, तब भी नहीं हो रहा है, बात जम नहीं रही है। प्रतिभाश्री मनोज सोनी और प्रतिभाश्री प्रदीप कुमार जोशी के अलावा इन युवाओं को कोई नहीं समझा सकता कि 4 साल की नौकरी के बाद आप दूसरी नौकरी के लायक बनने वाले हैं, आप NTA के चीफ बन सकते हैं, आप कई साल तक UPSC के चेयरमैन बन सकते हैं, ये इसकी खासियत हो सकती है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए, बताना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसा क्या बदल गया है जिसके लिए भारतीय सेना की शान, हमारे बहादुर सैनिक फिट नहीं होंगे, वो सैनिक जिन्हें 15 साल के लिए जवान बनने का मौका मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, आज तक तो वही सैनिक हर हमले का मुकाबला करते रहे हैं। ये समझने के लिए देखना होगा कि ऐसे अग्निवीर आते कहाँ से हैं, इनकी गरीबी ने सड़क पर सोने की ताकत दी है, मिडिल क्लास और NRI अंकिलों के बच्चे इस तरह से सड़क पर रात नहीं गुजारेंगे, अव्वल तो सेना में भर्ती भी नहीं होंगे। लेकिन जिन सैनिकों पर यह क्लास गर्व करता है इनकी हालत पर क्यों नहीं बोलता है, आप कैसे भी देखिए ये गरीब परिवारों से आने वाले नौजवान हैं। जनवरी 2023 में अग्निवीर अजय सिंह शहीद हो गए, दलित समाज से आते थे, कोई खेत जमीन नहीं, एक कमरे के घर में 9 लोग रहते हैं, नौजवान अजय की 6 बहनें हैं, पिता बीमारी के चलते काम नहीं कर सकते, माँ घरों में काम करती हैं, सेना की स्थायी नौकरी अपने परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने का सपना भी है। कितने ही नौजवान अग्निवीर के कारण सेना में भर्ती होने का सपना छोड़ गए, इनकी गरीबी इन्हें सैनिक बनाती है, लेकिन सैनिक बनने के बाद भी अगर इनकी गरीबी दूर ना हो तो ये कितना बड़ा अन्याय है। इन पर हर समय बेरोजगार होने की तलवार लटकी रहेगी। चार साल बाद क्या करेंगे, कहां जाएंगे, यही सोचते रह जाएंगे। इन नौजवानों के परिवारों पर महंगाई की मार पड़ी होगी, इनकी बचत में गिरावट आई होगी, इसका भी असर इनके परिवारों पर पड़ा होगा। जोंद्रेज ने वायर में लिखा है कि वास्तविक मजदूरी बढ़ी नहीं, तो इसका भी असर इनके परिवारों पर पड़ा होगा। तभी तो इनमें किसी भी हाल में एडजस्ट हो जाने की क्षमता आ जाती है। बात केवल नौकरी के साल की नहीं है, बात यह भी है कि अग्निवीर की सैलरी कितनी कम है। दो साल तक उनकी सैलरी महीने की 21,000 और 23,000 होगी। तमाम सुविधाओं की भी बातें हैं, शहीद होने पर मुआवजे और परिवार को मिलने वाली सुविधाओं में अंतर की भी बातें हैं। उन सारे सवालों का जवाब यह नहीं हो सकता कि अग्निवीर को यहाँ वहाँ 10% आरक्षण दिया जाएगा। सोचिए, इस तरह से कोई नौजवान रात को आसमान के नीचे लेटा हो और उसके बाद हाथ में सुबह का अखबार या खबर लेकर आए कि अग्निवीर की भर्ती में घोटाला हुआ है, कम नंबर वालों को भी हो गया है। मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान कोर्ट गए हैं याचिका लेकर, तो ऐसे नौजवानों का दिल कितना टूट जाएगा। भारत में बेरोजगारी का हाल ऐसा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक्य युवाओं को सलाह दे रहे हैं कि डिग्री विग्री से कुछ नहीं होगा, पंक्चर की दुकान खोल लो। एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाने के लिए उसे पंचर वाला कहा जाता रहा। इस तरह के कई मीम आपको सोशल मीडिया में मिलेंगे, जो 2014 के बाद मुसलमानों को पंचर कहा जाने लगा था। आज नियति देखिए कि बीजेपी के विधायक युवाओं को पंक्चर की दुकान खोलने की सलाह दे रहे हैं। मेरी राय में आप अग्निवीर की नहीं, वाइस चांसलर और आयोग का अध्यक्ष बनने की तैयारी कीजिए। चार साल की बहस से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।